हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम लेक्चर 9। यह हमारा परम सौभाग्य है, लगता है हम सबके किसी कार्य से, किसी सेवा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए हैं, जो हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं के विषय में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा बहुत मन था कि हम चैतन्य महाप्रभु और उनके परिकर गणों के विषय में कुछ पढ़ें। जब हमारी श्रीमद् भगवत गीता समाप्त हुई ना, तो मेरा मन ना कर रहा था कि हम चैतन्य महा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और उनके जो परिकर गण हैं, उनके साथ जो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य सुभाष ठाकुर, गदाधर पंडित, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और जो भी इनके हैं, राय रामानंद, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मेरा बहुत मन था कि इनके विषय में कुछ पढ़ा जाए, लेकिन क्योंकि हमारे गुरु महाराज का क्या आदेश है कि भक्ति में यदि कोई सबसे पहले एंटर होता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, जो कि आप सबको भगवान ने सौभाग्य प्राप्त किया कि हमने श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा। और फिर उसके बाद बारी आती श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जो कि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम महापुराण में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। तो मेरे मन में यही था कि अब 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, न जाने कितने वर्ष बीत जाएंगे इनको पढ़ते पढ़ते। तो पता नहीं हमें इस जीवन में महाप्रभु के विषय में कुछ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा अथवा नहीं। अब इतना समय बीतने के बाद कहाँ होंगे हम, कहाँ आप सब, तो पता नहीं ऐसा होगा। लेकिन देखो, चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि हृदय में बस बात आती है ना कि हम किस तरह से अपनी भक्ति में उन्नति करें, वो फौरन से पूरा कर देते हैं। एक क्षण भी नहीं लगाते हैं उसको पूरा करने में, फौरन से वो हमारी बात सुन लेते। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि इन कलयुग के जीवों, पतित जीवों का उद्धार केवल उनकी कृपा से ही संभव है। वास्तव में हम डिजर्व नहीं करते भगवान की भक्ति को, कृष्ण नाम को, कृष्ण प्रेम को, लेकिन ये महाप्रभु की असीम कृपा है जिनके जरिए से कि हमें ये सब प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुन ली और हमें भागवतम के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनने को प्राप्त हो रहा है। और हमने अब तक पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर उन्होंने सर्वभूम भट्टाचार्य से बहुत वेदांत सूत्र के विषय में बहुत बहुत चर्चा की, जिसमें बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वेदांत में जो है वो ब्रह्म को तो निराकार कहा गया, लेकिन भगवान का एक अस्तित्व तो बताया गया, भगवान का साकार रूप होता है। भगवान के तीन फेज के विषय में हमने पढ़ा, निराकार, परमात्मा और भगवान इति शब्द, यानी कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। और अपनी वेदांत सूत्र के ऊपर बहुत सारी टीकाएं देने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य जी को अपना चतुर्भुजी नारायण स्वरूप और द्विभुज स्वरूप, जिसके हाथ में वंशी होती है, वो प्रकट करके दिखाया। और चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में गिर गए भट्टाचार्य और उनकी प्रशंसा में 100 श्लोकों का बहुत ही उत्तम निर्माण किया। और उनमें मुख्य हमने क्या पढ़ा, पहले नंबर पर भट्टाचार्य ने कहा, मुझे उन भगवान की शरण में जाने दो जो सभी जो अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, वे करुणा के सागर हैं और वे अभौतिक विरक्ति यानी ज्ञान तथा भक्ति सिखाने के लिए स्वयं अवतरित हुए हैं। ये भट्टाचार्य कौन थे बता, स्वयं जिन्होंने सारे वेद कंठस्थ किए थे, वो वेदों के विषय में इतना सारे वेद शास्त्र के जो ज्ञानी थे, वो कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ही करुणा के अवतार हैं, वो भगवान हैं और अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं ताकि जीवों को भक्ति सिखाएं, ज्ञान सिखाएं और संसार से विरक्ति सिखाएं। और दूसरे नंबर पर उनका इम्पोर्टेंट श्लोक क्या था कि चूंकि भगवान की शुद्ध भक्ति लगातार कालांतर में विलीन हो गई थी, क्योंकि अब वो समय में क्या था, भगवान की शुद्ध भक्ति खत्म हो गई थी, अतएव उसके सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं, अतः मैं उनके चरण कमलों को नमस्कार करता हूँ। क्योंकि वो जान गए थे कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनको सरेंडर किया ये कहकर कि वो क्योंकि भगवान ही है, लेकिन भक्त रूप में अपनी भक्ति को जो कि छुप गई है, प्रच्छन्न हो गई है, उसको वापिस से संसार वालों को का उद्धार करने के लिए, उनको प्रदान करने के लिए आए हैं, तो मैं उन्हीं को सरेंडर करता हूँ। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा करते गए, और जो जो उनसे मिलते गए उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करते गए। और आज हम पढ़ रहे हैं गोदावरी नदी पर जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे तो उनकी भेंट उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास नगर के शिला रामानंद राय से हुई। रामानंद राय से उनकी भेंट हुई, उनकी मुलाकात हुई। और आप जानते हैं भक्तों, ये रामानंद राय कौन थे? कृष्ण लीला में जो विशाखा सखी हैं, जो भगवान की अंतरंगा सखियां हैं ना, आठ सखियों के विषय में हम पढ़ते हैं, ललिता विशाखा वगैरह, उनमें विशाखा सखी जो है वो चैतन्य लीला में रामानंद राय के स्वरूप में प्रकट हुई थी। और रामानंद राय के साथ उनकी वार्ताएं जो उन्होंने आपस में डिस्कस की थी, ज्ञान का उच्चतर अनुभूति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण, ये सब बहुत ही ज्ञानी भक्तों के रूप में अवतरित हुए थे। क्योंकि वो जो समय था ना, जो समय चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, उसमें ज्ञान पराकाष्ठ पे था, लेकिन भक्ति निम्न बहुत कम हो गई थी। अब ज्ञानी ज्ञानी लोग जब भक्ति करना शुरू करते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये चीज अच्छी है, तभी इतने जो है ना ज्ञानी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब कर रहे हैं। तो फिर इसी चैतन्य महाप्रभु ने डायरेक्ट, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, चैतन्य महाप्रभु ने केशव कश्मीरी को हराया, जो कि सारे दिग्विजय होकर आए थे, सब सारे पंडितों को हरा कर। उसके बाद श्याम काजी ने चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य, और अब रामानंद राय, जो कि प्रताप रुद्र के जो राज्य था ना, उसके बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। यानी जो प्रताप रुद्र जो थे वो इनके जो संपर्क से, इनके सारे उनसे पूछने के बाद सारे राज्य कार्य करते थे। तो इतने इस रामानंद राय की जो भेंट चैतन्य महाप्रभु से हुई, तो उन्होंने जब आपस में जो डिस्कस की वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाल जी उसका सारांश दे रहे हैं कि उन्होंने आपस में क्या क्या बातें की। इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता है, तो पूरे सच्चे हृदय के साथ हृदय की समस्त भौतिक आसक्तियों और मलिनता को साइड में रखें, गुरु और गौरंगा से प्रार्थना करते हैं कि हमें, हम पर इतनी कृपा करें कि हम चैतन्य महाप्रभु के इन दिव्य संदेशों को, दिव्य लीलाओं को समझ सकें और इस पर विश्वास कर सकें। वास्तव में भक्तों, ये जो श्रद्धा और विश्वास है ना, वो हमें भगवान के पास ले जाता है। ये श्रद्धा भगवान जितना करीब आता जाता है, जितनी हमारी श्रद्धा विकसित हो, कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को समझने का प्रयास नहीं करते, उनके विषय में सुनने के बावजूद भी पता नहीं क्यों हृदय में वो बात आती नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तो जब तक गुरु और गौरंग की कृपा नहीं हो जाती, तब तक हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में कितना भी सुन लें, मगर उनको स्वीकार नहीं करते हृदय से, तो हम गुरु महाराज से और गौरंग महाप्रभु से, नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु के समस्त परिकरों गणों से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय को इतना शुद्ध बना ले कि हम महाप्रभु के विषय में जो सुन रहे हैं उसको हृदयंगम कर सकें, उस पर विश्वास कर सकें, और चैतन्य महाप्रभु की सरेंडर शरण में जाकर भगवान की भक्ति को, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकें। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का एक ही मकसद है, कृष्ण प्रेम प्रदायक। ये जैसे तैसे आप जिस भी स्टेज पर हो, उसी स्टेज पर रहकर आप कैसे कृष्ण प्रेम प्रदान कर प्राप्त करो, यही चैतन्य महाप्रभु के आने का एकमात्र लक्ष्य है। तो मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहकर्णरघुनाथन् वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सहकर्णललित श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि श्री रामानंद राय बाह्य रूप से सामाजिक स्तर पर थे, ब्राह्मण से निम्न जाति के थे, किंतु वे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। वे सन्यासी नहीं थे, अपितु वे राज्य के उच्च प्रशासनाधिकारी थे। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनमें दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुभूति होने के कारण उन्हें मुक्त आत्मा के रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार महाप्रभु ने, अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि रामानंद राय उस टाइम पर राज्य के उत्तम अधिकारी थे, अब वो राज्य संभाल रहे थे, सन्यासी नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में पता है क्या, प्रताप रुद्र जो थे ना, उनसे कभी बात नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु, प्रताप रुद्र को भी बहुत मन था चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में आने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, हमेशा आते थे चैतन्य महाप्रभु, बोलते थे नहीं भाई, राजाओं से और ये जो संसार के इतने आसक्ति होते ना भोगी लोग, उनसे मैं मिलता ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रूप से मिलना ही अस्वीकार कर दिया, बोला उससे नहीं मिलता हूं। तो राय रामानंद, लेकिन क्योंकि वो भले शासन के उत्तराधिकारी थे, बहुत ज्यादा मतलब बड़े अधिकारी अधिकार पे थे, बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, लेकिन उनके अंदर जो विरक्ति थी ना भोगों से, इतना बिल्कुल अनासक्ति थी ना, उसको चैतन्य महाप्रभु ने देखा और चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद के साथ मतलब उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, क्योंकि जो राय रामानंद थे वो उच्च कोटि, उसके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा उच्च कोटि, दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुभूति होने के कारण मुक्त आत्मा स्वीकार किया चैतन्य महाप्रभु ने। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर श्री भगवान जी बता रहे हैं, इसी प्रकार महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर को एक निष्ठापूर्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया जो मुसलमान परिवार से आए थे। अब चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देखते थे कि आप किस कहाँ से आए हो, आपका जन्म कहाँ से हुआ है, लेकिन आपके हृदय में कितना भगवान के प्रति श्रद्धा है, और बस आपको स्वीकार कर देते। एक बार चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों को स्वीकार कर लेने के बाद आपको कृष्ण प्राप्ति गारंटीड है। तो यहाँ पर जो हरिदास ठाकुर हैं, जो कि मुसलमान परिवार से आए थे, उन्हें भी चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त महाप्रभु के अनेक महान भक्त हुए हैं जो विभिन्न संप्रदायों तथा जातियों से आए थे। किसी विशेष व्यक्ति की भक्ति का मानदंड महाप्रभु के लिए एकमात्र कसौटी था। कसौटी क्या था कि आपकी भक्ति किस स्तर पर, ये नहीं कि आप किस स्टेज पर हैं सामाजिक लिहाज से। वे मनुष्य की बाह्य वेशभूषा की परवाह नहीं करते थे, उन्हें तो केवल आंतरिक आत्मा तथा उसके कार्यकलापों से सरोकार होता था। अतएव भगवान के सारे धर्म प्रचार संबंधी कार्यकलापों को आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी कार्यकलाप थे उनको आध्यात्मिक स्तर पर समझना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किसी की भी भौतिक स्टेज को नहीं देखते थे, उनके अंतरंग कृष्ण प्रेम के विषय में ही सदैव देखते थे। इस तरह चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय या भागवत धर्म संप्रदाय को संसारी कार्य, समाज विज्ञान, राजनीति, आर्थिक विकास या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का मिशन केवल कृष्ण प्रेम प्रदान करने का था, तो बाकी जितने भी ये हैं, पॉलिटिक्स है, आर्थिक विकास है, ये जो राजनीति वगैरह जो भी है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। श्रीमद् भागवतम विशुद्ध रूप से आत्मा की दिव्य प्रेरणा है। अब हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा दी है क्या कि केवल कृष्ण प्रेम ही आपके जीवन का लक्ष्य है, तो श्रीमद् भागवतम हमें क्या बता रहा है, आत्मा की दिव्य प्रेरणा दे रहा है कि आप आत्मा हो और आत्मा का संबंध किस प्रकार से कृष्ण प्रेम में आत्मा को हम लगा सकते हैं, वो हमें श्रीमद् भागवतम से पता चलेगा। जब वे गोदावरी तट पर रामानंद राय से मिले तो महाप्रभु ने हिंदुओं के द्वारा पालन किए जाने वाले वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की। रामानंद राय ने कहा कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करने से हर व्यक्ति ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है, लेकिन महाप्रभु के मत से वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली सतही है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से इसका कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद के साथ डिस्कस कर रहे, तो बोला वर्णाश्रम धर्म क्यों है, तो राय रामानंद बोला कि वर्णाश्रम धर्म क्यों है कि उससे आपको भ्रम की अनुभूति होती है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप धर्म का पालन करोगे तो आपके पुण्य एकत्रित होते जाएंगे, तो आप भ्रम को समझ सकोगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है ना, वो सिर्फ स्टार्टिंग यानी सत्ता ही पर है, ऊपर ऊपर का ये है, उच्च कोटि आध्यात्मिक अनुभूति से इसका कोई भी संबंध नहीं। क्यों संबंध नहीं, क्योंकि वर्ण और आश्रम किससे रिलेटेड है, आपके शरीर से रिलेटेड है, लेकिन वास्तविक में आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, तो आत्मा का कोई वर्ण या आश्रम नहीं होता है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु इस बारे में बता रहे हैं कि सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जीवन की परम सिद्धि भौतिक आसक्ति से विरक्त होना और तदनुरूप भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में भक्ति की अनुभूति करना। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोल रहे रियल अनुभूति क्या है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हमें जीवन की परम सिद्धि के विषय में बता रहे हैं कि वो भौतिक आसक्ति से विरक्ति होना। अब क्योंकि वर्णाश्रम धर्म में रहकर तो भौतिक आसक्ति बनी रहेगी, तो उससे विरक्त होना और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना, उसका अनुभव करना ही जीवन की परम सिद्धि है। जो जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ता है उसे भगवान पहचानते हैं। अतः भक्ति ही समस्त ज्ञान के अनुशीलन की पराकाष्ठा है। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोलते इतना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लो, ज्ञान प्राप्त करने की पराकाष्ठा क्या है कि आप भगवान की भक्ति करो। अगर आप भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो ज्ञान प्राप्त करने के बाद, तो फिर आपका ज्ञान प्राप्त करना बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि आपने सिर्फ भौतिक स्तर पर ही ज्ञान प्राप्त किया। जब भगवान श्री कृष्ण समस्त पतित आत्माओं के उद्धार के लिए प्रकट हुए थे, तब उन्होंने सारे जीवों के उद्धार के लिए निम्नलिखित उपदेश दिया था। भगवान ने कहा, जिस भगवान से सारे जीव उद्भूत हुए हैं उनकी पूजा उन्हें अपने अपने सभी कार्यों से करनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह भी उनकी शक्ति का विस्तार है। यही वास्तविक सिद्धि का मार्ग है और भूतकाल तथा वर्तमान के समस्त प्रामाणिक आचार्यों द्वारा इसकी मान्यता मिली है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी है कि जो कुछ भी संसार में है, चाहे वो आध्यात्मिक है चाहे भौतिक स्तर पर है, उसका सबका उद्भूत करने वाला भगवान में हूँ, तो आपको क्या करना चाहिए, मेरी शरण में आनी चाहिए। तो यही यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि जब भगवान इस संसार में आए थे तो यही बताया ना कि सारे कार्यकलाप जितने भी आप हैं, आप कार्य करते हो, वो उन सब के जरिए आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत गीता में 18.56 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो जिनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो तो मेरे भक्त हो जाते हैं, और उनका कार्य क्या होता है, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्य पाशय मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। कि मेरे जो शुद्ध भक्त, जो संपूर्ण ज्ञानी, और भक्त पता है संपूर्ण ज्ञान होता है उसके पास, और वो ये जान लेता है कि केवल कृष्ण की भक्ति करने से ही मेरे जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त होगा। और इसीलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी, यानी कि वो कार्य नहीं छोड़ता, अपने सारे कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। क्योंकि सारे कार्यों में वो भगवान श्री कृष्ण को सेंटर में रखता है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि यही वास्तविक सिद्धि का मार्ग है और भूतकाल तथा वर्तमान के समस्त प्रामाणिक आचार्यों द्वारा इसको मान्यता मिली है। जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है श्रीमद् भगवत गीता में कि मेरी शरण में आना है, मेरी भक्ति करना है, और समस्त जितने भी प्रामाणिक शास्त्र हैं, प्रामाणिक आचार्य हैं, इसी बात को उन्होंने मान्यता दी है। वर्णाश्रम प्रणाली बहुत कुछ नैतिक एवं आचार संबंधी नियमों पर आधारित है। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वर्णाश्रम धाम के विषय में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये जो है वो नैतिक एवं आचार संबंधी, यानी कि सांसारिक भौतिक स्तर पर उनके नियमों पर ही आधारित है। इस प्रकार ब्रह्म की बहुत कम अनुभूति हो पाती है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसे सत्य ही कहकर अस्वीकार कर दिया और रामानंद राय से कहा कि वे इस विषय में आगे कहें। अब चैतन्य महाप्रभु एंड तक जाना चाहते, चलो ठीक है, शुरू शुरू में आप वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, उससे आपको ऐसा पता चलता है कि आप जो है वो किसी के नियंत्रण में हो, यानी कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आप भगवान परम सत्य के नियंत्रण में हो। लेकिन ये भगवान के साथ आपका प्रेम तो संबंध स्थापित नहीं कर सकती। इसके बाद क्या होगा, तब श्री रामानंद राय ने सकाम कर्मों को भगवान को अर्पित करने का सुझाव दिया कि शुरू शुरू में आप कर्म करते हो जितने भी वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से, कि ब्राह्मण अपना कार्य करेगा, क्षत्रिय अपना कार्य करेगा, वैश्य अपना, शूद्र अपना, लेकिन उसके बाद आगे क्या है, वो सारे कर्म जो है वो कहाँ पर करो, भगवान को अर्पित करो। इस प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता 9.27 देश है, तुम जो कुछ करो, जो कुछ खाओ तथा दान दो तथा जो कुछ भी तपस्या करो वह केवल मुझे ही अर्पित करो। श्रीमद् भगवद गीता 9.27 में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आप जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो यज्ञ करते हो और जो अर्पण करते हो, सब मुझे अर्पण किया करो। और भगवान इससे क्या होगा आगे भगवान श्री कृष्ण 9.28 में बताते हैं, शुभाशुभ फलैरेवम् मोक्षसि कर्म बंधनैहि संन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार से तुम समस्त शुभ अशुभ कर्म फलों से छूट जाओगे और फिर इस संन्यास योग से युक्त चित्त वाले मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगे। तो ये एकमात्र तरीका है कि अपने समस्त सकाम कर्मों के फल भगवान को समर्पित कर दे कि भगवान मैं कार्य कर रहा हूँ केवल तुम्हारी खुशी के लिए, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, अब सिद्ध सिद्ध हो, जो भी सिद्धि हो रही है, असिद्धि नाकामी हो रही है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो कुछ वो आपको देखना है, मैं तो केवल आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कर्मयोगी द्वारा यह समर्पण बताता है कि भगवान वर्णाश्रम प्रणाली की निराकार धारणा से एक सीढ़ी ऊपर है, लेकिन तो भी इस प्रकार जीव तथा भगवान का संबंध स्पष्ट नहीं हो पाता, अतएव महाप्रभु ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और रामानंद राय से आगे बोलने को बोला कि चलो ठीक है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे और उसके बाद जो कार्य करेंगे वो भगवान को अर्पित कर देंगे, लेकिन फिर भी भगवान से प्रेम का संबंध तो निर्माण नहीं हुआ ना, इसे आगे बताओ। तब रामानंद राय ने सुझाव दिया कि वर्णाश्रम धर्म का परित्याग करके भक्ति स्वीकार करनी चाहिए। महाप्रभु ने इस सुझाव को भी नहीं माना, उन्होंने बोला चलो ठीक है, फिर ऐसे समझ देते कि वर्णाश्रम धर्म को अस्वीकार कर देते और भक्ति स्वीकार करते हैं, लेकिन बोला नहीं, उससे भी आगे, क्योंकि मनुष्य को सहसा अपना पद नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक बात करें कि आप कैसे सारे वर्णाश्रम धर्म को छोड़ दो और खाली भक्ति करो, मनुष्य को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने कार्य तो करने चाहिए, क्योंकि अगर वो कार्य करना छोड़ देगा तो इससे वांछित फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अपना जो कार्य है वो तो करना ही है, मनुष्य को नियत कर्म कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि गीता का आदेश ही नहीं है ये। आगे राय ने आगे सुझाया कि भौतिक धारणा से मुक्त आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जीव की सर्वोच्च उपलब्धि है। महाप्रभु ने इस सुझाव को भी ठुकरा दिया। अब चेतन राय रामानंद बताते जा रहे हैं, आगे बताते जा रहे हैं, पहले बोला कि भौतिक धारणा से मुक्त यानी कि ये जो संसार में जो कुछ भी हम कर रहे हैं जो कार्य, उससे आध्यात्मिक अनुभूति की प्राप्ति जो है ना वो ज्यादा बेटर है, तो ये सारे कार्यकलाप इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस सुझाव को भी ठुकरा दिया, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति के नाम पर अनेक धूर्त व्यक्तियों ने बहुत सा बखेरा खड़ा कर दिया है, अतएव सहसा ऐसा कर पाना असंभव है, यानी कि ये नहीं कर सकते ना डायरेक्ट से हम भौतिक धारणा से ऊपर उठ जाएं और आध्यात्मिक स्तर तक, फिर तो सब लोग ढोंग करेंगे कि हाँ हम लोग भी भौतिक स्तर छोड़ दिया, बस अब कार्यकलाप नहीं कर रहे अपना और भगवान की भक्ति करने में। तो बोला ये सब बखेरा उन्होंने वैसे ही कर लिया है, इसलिए सहसा ऐसा कर पाना संभव नहीं है, डायरेक्ट से हम अपना कार्यकलाप नहीं छोड़ सकते। तब राय ने कहा कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की निष्ठावान संगति तथा भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से श्रवण श्रेष्ठ होगा। यहाँ पर राय रामानंद ने बहुत ही उत्तम बात बताई कि हाँ ठीक है, वाकई में हमको डायरेक्ट से नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, निष्ठावान व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनकी संगति करनी चाहिए, और सबसे पहले उनसे क्या करना चाहिए, भगवान की लीलाओं के दिव्य संदेश का विनीत भाव से यानी नम्रता के साथ श्रवण करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या है भक्ति में आने का, ये सब वर्णाश्रम धर्म अपने अपने स्टेज पर रहकर सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान के विषय में श्रवण करना है। और आगे बताया महाप्रभु ने इस सुझाव का स्वागत किया, स्वागत किया यानी कि बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं छोड़ना है, खाली जोड़ना है भगवान को, भगवान के प्रेम को, भगवान के संदेश को अपने जीवन में उतारना है। यह सुझाव ब्रह्मा जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए रखा गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या कहा है, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि भगवान अजित कहलाते हैं, अर्थात अजित, वे जो ना तो किसी के द्वारा जीते जा सके और ना उन तक किसी की पहुंच हो सके, लेकिन ऐसा अजित भी एक अत्यंत सरल तथा सुगम विधि से जित बन जाता है। यह सरल विधि है कि मनुष्य अपने आप को भगवान कहने की उद्धत प्रवृत्ति त्याग दे, मनुष्य को अत्यंत ही विनम्र एवं विनीत होना चाहिए और उस स्वरूप सिद्धि व्यक्ति की वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांति पूर्वक रहना चाहिए जो भगवत धर्म के संदेश तथा भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में बोल रहा है। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस श्रवण विधि को स्वीकार किया और सबसे पहली बात जो है चैतन्य महाप्रभु को जो बहुत अच्छी लगती है वो है विनीत भाव, कि जो शुद्ध भक्त हैं जब वो बोलते हैं, जब हम जैसे हम हमारा सौभाग्य है कि हम श्रील प्रभुपाद के द्वारा सुन रहे हैं। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं समझ में आती है, हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, लेकिन हमारा कर्तव्य यहाँ पर क्या बनता है, क्योंकि हमने नहीं समझा, हमारी बुद्धि नहीं समझ पा रही है, या मेरे जैसा मूर्ख अगर आपको समझा रहा है वो समझा नहीं पा रहा है, तो वो हमारी कमियां है ना, हमारी खामियां। लेकिन जो शुद्ध वैष्णव ने कहा है, जो शास्त्र कह रहा है, उसमें तो कोई भी गलती नहीं है, तो उसको हमें विनीत भाव से स्वीकार, इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। नहीं समझ में आया तो उसको समझने का प्रयास करने के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, कुछ लोग बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे हो सकते हैं, ये तो शास्त्र में भले लिखा होगा फिर भी वो प्रमाण को भी नहीं मानेंगे। लेकिन वास्तव में आप भगवान को, यहाँ पर बताया कि भगवान को अजित कहा जाता है, कि उसको जीता नहीं जा सकता, लेकिन उसको भी जित बनाया जा सकता है, जीता जा सकता है, कब, जब आप परम वैष्णव के शब्दों को विनीत भाव से सुनते हो, विनम्रता के साथ उसको एक्सेप्ट करते हो। चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कह दिया, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है वो कभी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सदैव नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए वो आ सकता है भक्ति में, लेकिन जब तक विनम्रता की नींव नहीं रखी होगी ना, भक्ति जो है ना उसकी बुनियाद रखी जाती है विनम्रता पर। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के थर्ड श्लोक में कहते हैं, तृणादपि सुनी सेना तरोरपि सही श्रोणा अमानी न माने देना कीर्तनी सदा हरि। यदि आपको सदैव भगवान का कीर्तन करना है तो आपको वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होना पड़ेगा, घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्र होना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसा करोगे और दूसरों को सम्मान दोगे, अपने लिए सम्मान की कोई इच्छा नहीं करोगे, तभी कीर्तनी सदा हरि, तभी ये शर्त रखी है महाप्रभु ने भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन सदैव करने के लिए, कि आपको विनम्र बनना पड़ेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, मनुष्य को अत्यंत विनम्र एवं विनीत होना चाहिए और उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की वाणी को कान लगाकर सुनते हुए शांति पूर्वक रहना चाहिए जो भगवत धर्म के संदेश तथा भगवान और उनके भक्तों को गौरवान्वित करने के विषय में बोल रहा है। महाप्रभु की महिमा का गान करना जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन उन्होंने भगवान की महिमा का गान करना नहीं सीखा है। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है महापुरुष की महिमा, यानी जो बड़े, आज संसार में क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं या चमत्कारी लोग होते हैं, उनकी महिमा का गान करना जीवों में स्वभाव। किसी ने कुछ अच्छा कार्य कर दिया, वाह भाई कितना अच्छा बंदा, या फिर कोई चमत्कार दिखा दिया, लेकिन उन्होंने भगवान की महिमा का गान करना नहीं सीखा। भगवान ने इतने इतने चमत्कार किए हैं, और ये जो चमत्कारी पुरुष आप देख रहे हो वो सब भगवान की ही तो शक्ति है। भगवान ने ही तो उनको पैदा किया, तो जो सबसे बड़ा चमत्कार ये, उनकी महिमा का गान करना लोगों को नहीं आता, लोग भूल जाते हैं। सांसारिक लोगों की प्रशंसा करना उनको आ जाता है आसानी से, क्योंकि दिखता है ना, फिर भगवान के विषय में वो सोचते नहीं, भगवान की प्रशंसा भी नहीं करते हैं, और उन्होंने उनकी महिमा का गान करना यहाँ पर लिखा नहीं सीखा, उनको आता ही नहीं। भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त की संगति में रहकर भगवान के गुणगान करने से जीवन की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर शिवपाल जी बताए कि साधारण लोग क्या करते हैं, आप जिसके साथ भी बैठोगे ना, वो साधारण लोगों के विषय में बात कर रहे हैं, वो ऐसा इतना अच्छा हो इतना, लेकिन शुद्ध भक्त क्या करते हैं, वो सदैव भगवान के गुणगान, भगवान के विषय में गुणगान करते हैं, भगवान की भगवान की महिमा के विषय में बताते हैं कि भगवान के ये सब भगवान की तो कृपा है जो हमें नजर आ रही है संसार में। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यत् विभूतिमत् सत्त्वम् श्रीमदूषितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभव, कि संसार में तुम्हें जो कुछ भी भौतिक या आध्यात्मिक प्रशंसा के लिए योग्य लगता है वो सब मेरे भव्य तेज की एक सफुलिंग मात्र है। कि जो जैसे भगवान का बहुत बड़ा तेज है, उसकी एक छोटी सी चिंगारी है जो संसार में है, वो तो कुछ भी नहीं कृष्ण के भव्य महिमा के उस बराबरी तो कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी सामान्य जीव की बुद्धि इतनी थोड़ी होती है कि वो उसी में अटक कर जाता है और भगवान के विषय में नहीं सोच सकता। इसीलिए भक्तों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि भक्त जो है वो डायरेक्ट से भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं, भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न भी उठता है कि भाई अब यहाँ पर हमें भगवत भक्त कहाँ से मिले जिनकी हम संगति करें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद ने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत स्कोन की स्थापना इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई। किस उद्देश्य की? कि लोगों को भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो सके, जिससे वो भगवान की महिमा का गुणगान कर सके एवं भगवान की महिमाओं को श्रवण कर सके। स्वरूप सिद्ध भक्त वह है जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में चला जाता है और जिसमें भौतिक संपन्नता के लिए कोई आसक्ति नहीं रहती है। ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। कभी कोई पूछे ना कि वो कैसा होता है, तो उसका यहाँ पर उल्लेख किया है कि वो संपूर्ण पूर्ण रूप से भगवान की शरण में होता है, भौतिक संपन्नता भौतिक आसक्ति के लिए उसके हृदय में कोई जगह नहीं होती, आसक्ति कोई नहीं होती किसी चीज के लिए। भौतिक संपन्नता तथा इंद्रिय भोग एवं उनकी उन्नति, ये सब मानव समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप है। अब क्योंकि हमें पता नहीं होता अज्ञानता क्या है, जानते हो अज्ञानता क्या है? कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं और ये सब इंद्रिय तृप्ति और भौतिक संपन्नता ये सब शरीर से डिपेंडेंट करते हैं, हमारी आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है तो फिर वो इन चीजों के लिए कोई परिश्रम नहीं करता। तो ये सब यहाँ पर शिव पप्पा जी बोलते हैं ये समाज में अज्ञानता के कार्यकलाप है। ऐसे समाज में शांति तथा मैत्री भाव असंभव है। जो ईश्वर तथा उनके भक्तों की संगति से दूर रहे, इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठा पूर्वक सिद्ध भक्तों की संगति की तलाश करें और जीवन की प्रत्येक अवस्था में उनसे धैर्य पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रवण करें। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे कि अगर कोई कोई लोग बोलते हैं ना भाई हमें मिलते नहीं, यहाँ पर शुद्ध भक्त हमारे एरिया में है ही नहीं, हम कैसे उनकी संगति करें। लेकिन अगर आप बीमार हो और आपके एरिया में कोई डॉक्टर नहीं है तो आप छोड़ दोगे? भाई डॉक्टर है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। ये जो रुग्ण अवस्था है, जब हम भगवान से अपने प्रेम को निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो ये शास्त्र कहता है रुग्ण अवस्था है, सबसे बड़ी बीमारी है आपकी, तो उसके लिए आपको डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेंगे, शुद्ध वैष्णवों को भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, रो रो कर विनय करनी पड़ेगी। हमारे शिक्षा गुरु महाराज कहते थे कि यदि आपसे भगवान, आपको कभी दिल करे ना भगवान से कुछ मांगने का, तो भगवान से रो कर केवल इतना मांगो कि शुद्ध भक्तों की संगति प्रदान करो कृष्ण। और जब शुद्ध भक्त की संगति प्रदान हो जाती है, आपके आपका संपर्क किसी शुद्ध वैष्णव से हो जाता है ना, उसी दिन से कृष्ण प्रेम का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उसी दिन से कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति जो सुप्त अवस्था में ना आपके हृदय में वो उदय होना शुरू हो जाती है। तो हमें भगवान से यहाँ पर साफ साफ लिखा है श्री प्रभुपाद ने कि इसलिए ये आवश्यक है कि मनुष्य निष्ठा पूर्वक शुद्ध भक्तों की संगति तलाश करे। और जितने हम तलाश करेंगे ना, जितनी हम सिंसियरिटी के साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान को बोलेंगे कि देखो हम चाहते हैं कृष्ण कि हम अपने जीवन को सार्थक करें, तो मिल ही जाता है। कृष्ण चोर को चोर मिला देता है, ठग को ठग मिला देता है, शराबी को शराबी मिला देता है, तो फिर भोगी को भोगी मिला देता है, भक्त को भक्त क्यों नहीं मिलाएगा। कृष्ण पे विश्वास होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, और यहाँ पर साफ लिखा है कि उसको तलाश करना चाहिए और जीवन की प्रत्येक अवस्था में उनसे धैर्य पूर्वक तथा विनीत भाव से सुनना चाहिए। श्रवण करना अत्यधिक आवश्यक है, उसकी महानता बता रहे श्री प्रभुपाद जी कि आपकी उन्नति तभी हो सकती है जब आप भगवान के विषय में शुद्ध भक्त से सुनते हो। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में किसी मनुष्य का उच्च या निम्न जीवन पद बाधक नहीं होता है, यानी कि भौतिक जीवन आपका कभी भी भौतिक बाधक नहीं होता है, अगर आप वैश्य हो, शूद्र हो, जो भी हो। लेकिन यदि आप आत्म साक्षात्कार के पद पर ऊपर उठना चाहते हो, तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है वो कभी भी आपके लिए बाधक नहीं बनेगा। लेकिन जो एक बात करनी है वह है नियमित रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनना। कितना सुंदर यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, देखो सबसे ज्यादा एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, ये श्री प्रभुपाद जी साक्षात भगवान के स्वरूप सिद्ध भक्त हैं। और आप सबका, हम सबका बहुत ही दिव्य सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम उनके मुखारविंद से सुन रहे हैं। कितना समझ में आ रहा है वो बात, में यहाँ पर सिर्फ सुनने की बात हो रही है, सिर्फ श्रवण। अब भक्ति की पहली जो स्टेज है वो श्रवण है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में तो इवेंटली आता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे शुद्ध भक्तों की संगति करना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। अब कितना समझ में आ रहा है उस पर भी हमारी बुद्धि, क्योंकि जैसे जैसे विकसित होगी, क्योंकि इतने सारे समय से हमने भौतिक चीजों के विषय में ही सुना है, उन्हीं को समझने का प्रयत्न किया ना, तो हमारी जो बुद्धि है ना उसमें सूक्ष्म तंत्व होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं कुछ जो आध्यात्मिक चीजों को समझते हैं, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो भौतिक चीजों के लिए होते हैं। अब क्योंकि भौतिक चीजों के विषय में सुनते 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 हमने क्या किया है, अपने जो बुद्धि के आध्यात्मिक सेल होते हैं ना, आध्यात्मिक चीजों को समझने वाले तंत्र होते हैं, उनको बहुत ही कमजोर कर दिया है। अब वो इतनी कमजोर है कि आध्यात्मिक चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बात जो करनी है वह यह है कि नियमित रूप से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुनो। नियमित रूप से मतलब कंटिन्यूस आपको सुनना है स्वरूप सिद्ध अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर जिन्होंने परम सत्य के साक्षात्कार किया है। अब यहाँ पर हमारे लिए एक आदेश यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अध्यापक यानी जो सुनते हैं ना परम सिद्ध व्यक्तियों से श्रवण करके, अध्यापक अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर जिन्होंने परम सत्य का साक्षात्कार किया है वैदिक साहित्य के विषय में भाषण दे सकते हैं, यानी कि उनसे सुनकर फिर एज इट इज बोल सकते हैं, जैसा उन्होंने बताया है उन हम सबको वैसा सुनकर फिर एज इट इज दूसरों को बताने के लिए परमिशन दी है, बल्कि आज्ञा दी है कि अध्यापक को ऐसा ही करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने आत्म साक्षात्कार की इस सरल विधि की संस्तुति की है जिसे सामान्यता भागवत धर्म कहा जाता है। क्या धर्म है? परंपरा एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियो विदु, कि जैसा गुरु परंपरा से आपने सुना है एज इट इज दूसरों को सुनाओ। इस कार्य के लिए श्रीमद् भागवतम पूर्ण पथ प्रदर्शक है, और इस सुनने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, श्रीमद भागवतम महापुराण, कि श्रीमद भागवतम, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को कहा था, उसकी सारी बातों को निग्लेक्ट करते करते बोला हाँ श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी, और श्रवण करना है किससे, तो श्रीमद भागवतम पूर्ण पथ प्रदर्शक है, इसी से हमें सही बात समझने के लिए और सुनने के लिए प्राप्त होगी, और ये पूर्ण जो शुद्ध व्यक्ति हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके जरिए से रचा गया है, उनके जरिए से ये टीकाएं लिखी हुई हैं, और हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त, जो कि भगवान के शक्ति आवेश अवतार ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिवप्रभुपाद जी हैं, उनकी कृपा से श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा। हरे कृष्ण।